और हम सब की तरफ से हम सभी एक जोरदार तालियों से भाई का स्वागत करेंगे। तो भाई जी अपने जितने भी वरिष्ठ दादियां हैं, वरिष्ठ भ्राताएं हैं, उनके अंग संग रहते हैं, तो सोचो तो उनके साथ रहने का ये कितना बड़ा सौभाग्य है। और उनके साथ रहकर वो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी उनके पूछते हैं, तो वो आज उन प्रश्नों को लेकर भी हम आपके बीच में आए हैं। तो आप सभी भी बीच में कोई किसी को ऐसे संकल्प भी आता है, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप पूछ सकते हैं। उससे पहले हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर आगे हम प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम चालू करेंगे। सभी सुबह से बहुत अच्छी भक्ति की, आप सभी के चेहरे भी बड़े चमकदार दिखाई दे रहे हैं। तो मधुबन बगिया से आज हमारे बीच में आदरणीय ललित भाई जी पधारे हैं। वो बाबा के वो पुरानी खुशबूदार फूल है जो आप अभी उनके उत्तरों को सुनेंगे, तो हम सचमुच में उसका आज लाभ। तो पहला प्रश्न भाई जी हमारे मन में आ रहा है, और ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हमारे भाइयों ने हमें कुछ लिख के भेजे हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन है। तो जो बाबा का ज्ञान जो है वो हमें ज्ञान में आने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस ज्ञान की सब्जेक्ट में हम हर रोज जो ज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें हम कैसे आगे बढ़े, तो ये एक सवाल हमारे बीच में आया है। तो इसमें हम कैसे आगे जा सकते हैं ज्ञान के इस सब्जेक्ट में?
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा का ये ज्ञान जो है वो इतना सहज है जो कभी कभी तो एक आश्चर्य की तरह लगता है कि क्या आदि मध्य अंत का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान बस सिर्फ इतना ही है, क्योंकि मैंने तो भक्ति की हुई है, ज्ञान में आया उसके पहले बहुत भक्ति की थी, बहुत शास्त्र पढ़े थे, और मुझे जितना इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो अगर सभी धर्मों के सभी धर्म ग्रंथों को इकट्ठा किया जाए, उसकी एक एक कॉपी भी अगर रखी जाए, तो हमारे शांतिवन का डायमंड हॉल भी छोटा पड़ जाए और डायमंड हॉल बनाने पड़े, इतना धर्म ग्रंथ बने हुए हैं दुनिया में और लोग उसको पढ़ते रहते। जैसे आज बाबा ने मुरली में बताया ना कि तोते के मुआफिक केवल पढ़कर वापिस बोलते रहते हैं, फिर भी निज आत्मा का और उस परमात्मा पिता का जो सत्य ज्ञान है वहां तक नहीं पहुंच सके, उतना सब कुछ होते हुए भी। और बाबा ने भी कहा है कि आटे में नमक मिसल, केवल सच्चाई उसमें रह गई थी। पर बाबा का ये ज्ञान सचमुच देखेंगे तो इतना सहज है, मतलब मैं सन्यासी बनने वाला था, साक्षात्कार के हिसाब से कोई बन करना है तो सन्यासी बन रहा था, और बाबा का ये कोर्स आके किया तो पांचवें दिन, मतलब एक एक घंटे का कोर्स होता है, तो पांचवें दिन मतलब पांचवें घंटे में मुझे वो सब अनुभव हो गया जो मैं बरसों से जिसकी इंतजार में था, तलाश कर रहा था। तो कितना सच कि भाई मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु, पहला स्टेप जो तीन बार ओम शांति बोली, तो पहला स्टेप ये कि मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु, दूसरा ओम शांति परमात्मा मुझे आत्मा के पिता है, वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, और तीसरा मुझे क्या करना है। पहले ये सोचा कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा मतलब जीवन का पूरा लक्ष्य पूरा हो गया, बस और कुछ जीवन में बाकी रहेगा ही नहीं, ये ही मंजिल है, साक्षात्कार ही एक मंजिल है ऐसा समझते थे। लेकिन बाबा के मिलने के बाद ये पता चला कि यहां से तो यात्रा शुरू हो रही है। प्रभु मिलन के बाद तो यात्रा शुरू हो रही है। तो इतना सहज ज्ञान है। आज 77 इयर्स हो गए हैं बाबा को भी मुरलियां चलाते हुए, पर मूल बात तो यही है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, परमधाम का रहने वाला हूं। अब घर जाना है और वापिस नई दुनिया में आना है। इन बस 8-10 लाइनों में ही पूरा ज्ञान का सार आ जाता है। तो इस ज्ञान में अगर हमको आगे बढ़ना है तो जरूर ज्ञान का मनन मंथन करें, और ज्ञान तो है लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लावे, ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि उस ज्ञान की छोटी से छोटी पॉइंट को भी प्रैक्टिकल जीवन में लेके आवे, तो वो ज्ञान जीवन में होगा और जीवन में होगा तो वो आगे बढ़ेंगे। जैसे कौरव पांडव के लिए एक कहानी आती है कि जब वो छोटे थे गुरुकुल में अपने गुरु के पास पढ़ने जाते थे तो सभी साथ में पढ़ते थे, कौरव पांडव सभी साथ में पढ़ते थे। तो एक दिन गुरुजी ने उनको एक लेसन दिया कि आपको ये याद रखना है कि गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करना अच्छी चीज नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, तो वो तो कि ये लेसन याद करके लाना, और भी जो बातें बताई उसके साथ ये भी था कि ये याद करके लाना कि मैं वापिस पूछूंगा आपको याद है कि नहीं। फिर दूसरे दिन वो सब गुरुकुल पहुंचे तो गुरुजी ने पूछा कि कल का लेसन याद हुआ, तो सब ने हाथ खड़ा किया कि हाँ याद है, केवल युधिष्ठिर ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो बड़ा ज्येष्ठ राजकुमार था, हाथ खड़ा नहीं किया। तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ आपको वो याद नहीं जो कल हमने पढ़ाया था, तो कि गुरुजी याद कर रहा हूँ, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ याद करने की, ठीक है कल याद करके लाना। फिर दूसरे दिन गए, फिर उसी को पूछा, बाकी तो सबको याद था गुस्सा नहीं करना, तो उनको पूछा कि अभी आपको याद हुआ वो लेसन, तो कि गुरुजी मैं अभ्यास कर रहा हूँ याद कर रहा हूँ, हो जाएगा विश्वास है अभी तक तो नहीं हुआ है। ऐसे 2-3 दिन तक पूछा तो उसने यही जवाब दिया कि मैं अभी अभ्यास कर रहा हूँ याद कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने फिर उसको थोड़ी शिक्षा दी, कुछ कहा या कुछ छोटी सी सजा दी। जब वो दिया और उसके 5-10 मिनट बाद बोले गुरुजी अभी मुझे याद हो गया है वो लेसन, तो गुरुजी ने बोला इतनी सी बात है और अब याद हुआ है आपको कैसे हुआ, तो कि मैं ये देखना चाहता था कि मुझे सचमुच गुस्सा आता है कि नहीं आता है। अब मुझे गुस्सा जब नहीं आया तो मैं कह सकता हूं कि हाँ मुझे वो याद आ गया, वो याद हो गया लेसन। मैंने खुद यहाँ अपने बीके परिवार में भी देखा है, अपनी लाइफ खुद की लाइफ में भी देखा है। ज्ञान बहुत है, अभी तो कितने कोर्स बन गए हैं, कितने क्लासेस हैं, कितनी भट्टियाँ होती है, बहुत। बाबा की मुरलियाँ ही देखो कितनी है, 69 के बाद की अव्यक्त मुरलियाँ भी अगर देखने जाओ तो कितनी है। आप में से कौन है जिन्होंने 69 के बाद की सारी मुरलियाँ पढ़ी है, हाथ खड़ा करेंगे? जो 69 के बाद की अव्यक्त मुरलियाँ जो बाबा ने चलाई वो सारी की सारी पढ़ी है। तो देखिए बाबा का दिया हुआ इतना ज्ञान है, तो वो सब तो है लेकिन उसकी एक एक चीज हमारी लाइफ में हो प्रैक्टिकल, तो हम कहेंगे कि हाँ हम ज्ञान में आगे बढ़े। केवल पॉइंट्स याद रखने से या बहुत अच्छे क्लास कराने से वो तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बढ़िया तो तब है जब ज्ञान में आगे बढ़ना, तो तब माना जाएगा कि जब हम उस ज्ञान को जीवन से हम प्रत्यक्ष कर सके, दिखावे, ऐसा मेरा।
बहुत अच्छा। ज्ञान को अपने जीवन से प्रत्यक्ष करना, ये सही मायने में बाबा का ज्ञान धारण करना है, और इसी प्रकार हम ज्ञान में भी आगे बढ़ते रहेंगे। भाई जी, इसी प्रश्न की श्रृंखला में हम आपको दूसरा प्रश्न पूछने जा रहे हैं। मनन शक्ति के ऊपर बाबा ने आज का स्लोगन भी बहुत सुंदर बताया है कि मनन शक्ति से ही ज्ञान धन बढ़ता है। तो वैसे भी भाई जी, आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में किस प्रकार से विचार सागर मंथन करते हैं, और तथा और आप सभी को ज्ञात होगा कि भाई जी कवि भी है, तो अंत में हमें इस प्रश्न के वो कविता भी सुनाएंगे, तो उसका भी हम लाभ लेंगे। तो भाई जी, आप विचार सागर मंथन कैसे करते हैं और उसके कुछ टिप्स भी हमें दें, और बाद में हम कविता भी सुनेंगे उनसे।
विचार सागर मंथन ये एक एक्सरसाइज है और एक प्रोसेस है। जैसे हम शरीर के लिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं शारीरिक स्वस्थता बनाए रखने के लिए, इसी प्रकार से मन और बुद्धि के एकाग्रता के लिए, उनके विशालता के लिए ये विचार सागर मंथन किया जाता है। कोई भी एक बात है, कोई भी एक पॉइंट है हमारे ध्यान में आया, तो उसको अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करना। जैसे एक पॉइंट किसी ने हमको सुनाया, कि हमको जोर से नहीं बोलना चाहिए, मुरली में आया पॉइंट कि जोर से बोलना ये रॉयल स्वभाव नहीं है या रॉयल एक मैनर्स नहीं है। अब इस पे हमको विचार सागर मंथन करना है, तो हम इसके सब क्वेश्चंस जो हैं वो निकाले थोड़े, कि हम जोर से क्यों बोलते हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां आती है जब हमारी आवाज ऊंची हो जाती है। फिर ये भी हम थोड़े अपने अनुभव से मंथन करें कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति या ग्रुप या व्यक्तियों की श्रेणी है कि जिनके सामने हम जोर से बोलते हैं। सभी के सामने जोर से नहीं बोलते हैं, लेकिन कोई ऐसे ग्रुप्स हैं या व्यक्ति है, कोई घर में कोई बच्चा होगा या कोई भी ऐसे कुछ भी होंगे जिनके सामने हम जोर से बोलते हैं या जिसके साथ हम जोर से बोलते हैं। फिर ऐसा कौन सा समय है जब हम जोर से बोलते हैं? फिर जोर से बोलने के इस स्वभाव को हम बदली कर सकें, उसके लिए हम कौन से ज्ञान का पॉइंट अप्लाई करें कि भाई मैं फरिश्ता हूं, मुझे मुस्कुराकर पेश आना चाहिए, या मैं परमात्मा के द्वारा चुना हुआ एक एग्जाम्पल रूप व्यक्ति हूं, जैसा मैं करूंगा मुझे देख के और भी करेंगे। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स की भाई ये इन पॉइंट्स को मैं ध्यान में रखूंगा तो मैं जोर से नहीं बोलूंगा। इस प्रकार से किसी भी पॉइंट को डिवाइड करके उसको डिफरेंट एंगल से एनालिसिस करते हैं, जब हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि जैसे उसके विचार सागर मंथन में जा रहे हैं। और उससे क्या होता है, जब हम दही का मंथन करते हैं तो क्या निकलता है, मक्खन निकलता है। तो इसी प्रकार से जब हम किसी चीज पॉइंट पर विचार सागर मंथन करते हैं तो क्या होता है, उसका जो सार निकलता है वो मक्खन किसके काम में आता है, शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए मक्खन काम में लेते हैं। तो इसी प्रकार से मन और बुद्धि को हष्ट पुष्ट करने के लिए ये विचार सागर से निकला हुआ मंथन मक्खन वो हमको बहुत काम लगता है। इसलिए ये विचार सागर मंथन इस प्रकार से हम कर सकते हैं।
बहुत खूब भाई जी, आपने बहुत चंग शब्दों में हमें इसका महत्व बताया और किस रीति से विचार सागर मंथन करना है और आत्मा को कैसे हष्ट पुष्ट बनाना है। तो
पोइम के लिए कहा था मुझे,
हाँ हम पोइम भी सुनेंगे अभी।
ॐ शांति
शांति,
ॐ शांति
शांति।
अंतर मन में ज्योति जगा लो।
इस प्रकार से कोई विचार सागर मंथन करते करते ही कोई ध्यान में आता है तो लिख लेता हूँ। इसका टाइटल है अब तो मुस्कुराओ। हमारे पास मुस्कुराने के अनेक कारण हैं। बाबा ने इतना खजाना दिया है कि हम मुस्कुरा ही सकते हैं, लेकिन कभी कभी जब खजाने की विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं, तब मुस्कुराना भी भूल जाते हैं। तो वही कुछ बातें केवल इसमें लिखी है मैंने, जो एक विचार सागर मंथन को एक थोड़े शब्दों में ढाला हुआ है, उतना ही है। बिन कोड़ी खर्चे ज्ञान मिला, हर समस्या का समाधान मिला, धरती तो क्या आसमान मिला, अब तो खुश हो जाओ, अब तो मुस्कुराओ, अब तो मुस्कुराओ। सुंदर श्वेत परिधान मिला, ब्राह्मण कुल में स्थान मिला, बाप दादा का प्यार मिला, अब तो गीत गाओ, अब तो मुस्कुराओ, अब तो मुस्कुराओ। प्रभु मिलन का योग मिला, अभिमान मिटा, स्वमान मिला, अंधेरों में प्रकाश मिला, अब तो हाथ बढ़ाओ, अब तो मुस्कुराओ, अब तो मुस्कुराओ। नाटक में अच्छा पार्ट मिला, शिव साजन का साथ मिला, मधुवन जीवन धाम मिला, स्नेह सुमन बरसाओ, अब तो मुस्कुराओ, अब तो मुस्कुराओ। परम धाम की राह मिली, चमकीली फरिश्ता ड्रेस मिली, पल पल पर खुशहाली मिली, अब तो नाचो गाओ, अब तो मुस्कुराओ, अब तो मुस्कुराओ।
बहुत खूब, बहुत खूब भाई जी। आप सभी ने ज्ञान अमृत इस मंथ की पढ़ी होगी, तो उसमें जरूर पढ़ना रमेश भाई का वो लेख। तो उस इस भाई जी की कविता से मुझे पता चला कि ब्रह्मा बाबा भी ऐसी कविताएं लिखते थे जब बाबा उनके तन में आए तो बच्चों को बढ़ाने के लिए। तो भाई जी सचमुच ही ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो कर रहे हैं। धन्यवाद भाई जी, आपने बहुत हम सबको मुस्कुराना भी सिखा दिया। अब श्रृंखला प्रश्नों की इस कड़ी को आगे हम जारी रखते हैं। तो भाई जी, आज इस बाबा के बेहद की बगिया में आज हमारे नवरंगपुरा के भी मन के जो है सारे तैयार है, लेकिन जो मन का जो है मन का मन के समीप नहीं है, तो वो समीप में लाने के लिए जैसे आप, मैंने भी सुना है कि भाई जी भी 108 के माला के मनके में आने के लिए वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो कैसे 100 तीव्र पुरुषार्थ करके 108 की माला में हम सभी नवरंगपुर आना चाहते हैं ना? सभी आना चाहते हैं? हाथ तो लग, बहुत खूब, बहुत खूब, सभी आना चाहते हैं भाई जी। तो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए भाई जी, इसके टिप्स हमें बताइए।
पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ और बाबा को भी, आज बहुत खुशी होगी क्योंकि वो कब से 108 की माला बनाने के लिए जो कोशिश कर रहा है, तो आज 50% माला तो उसकी बन गई यहाँ से। और नेचुरली 108 की माला में आना है तो तीव्र पुरुषार्थ तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये तीव्र पुरुषार्थ शब्द जो है ना, वो कभी भारी कर देता है, वो मुस्कुराहट कम कर देता है। तीव्र पुरुषार्थ का टेंशन या उसका भारीपन, कि भाई ऐसा क्या करना है हमको, 8-10 घंटा 15 घंटा बैठ के योग करें, ये करें वो करें, वो भी समय के हिसाब से होता है। जब ओरिजिनल जब भट्ठी बनी थी 1936-37 में बाबा की पदरामणी हुई और उसके बाद जो ग्रुप बना, तो 14 साल उन्होंने तपस्या की थी, वो भी एक समय था जब 14 साल तपस्या की थी। अब जब पहले यहाँ से आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो पैदल जाते थे या बैलगाड़ी से जाते थे, तो उस समय उतना टाइम लगता था, पहुँचते थे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही, लेकिन उस समय उतना टाइम लगता था। लेकिन आज आज कार है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, तो जल्दी पहुंच जाते हैं। पहले ये ज्ञान का जो विस्तार आप क्लैरिटी देख रहे थे वो इतनी क्लैरिटी नहीं थी, आज बहुत क्लैरिटी है नॉलेज की, तो फास्ट पुरुषार्थ सहज हो सकता है। पर मैंने अपने अनुभव से जो देखा है और जो मैं अभ्यास कर रहा हूँ वो यही है जो मेरे पहले प्रश्न का उत्तर था तीव्र पुरुषार्थ में, कि हमारी करनी कथनी करनी में आ जावे और उसके एक लेवल डीप जाएं, तो जो हमारे विचार हैं वो पॉजिटिव हो और उसको हम प्रैक्टिकल में लावें। बहुत ज्यादा ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें तीव्र पुरुषार्थ के लिए भी, बस ये हमारी जो सोच है मनसा वाचा और कर्मणा तीनों एक लाइन में आ जावे। जो हम दूसरों से चाहते हैं वो हम भी दूसरों के लिए करें, इतनी सहज केवल हम अटेंशन रखते हैं अपने आप पर तो तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। मैंने बताया ना कि आपको एक बार यहां क्लास में भी सुनाया था पहले, कि निर्मल शांता दादी को जब मैंने पूछा कि मुझे बाप समान बनना है, मुझे कोई एक पॉइंट बताओ आप कि वो पॉइंट पे मैं पुरुषार्थ करूं तो मैं बाप समान बन जाऊं, सिर्फ एक पॉइंट आप बताओ, मैं ज्यादा नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने मेरे को इतना ही कहा कि मुस्कुराते रहो बस। अब इतनी छोटी सी बात थी लेकिन जब इसकी मैं गहराई में गया तो मुझे पता चला इसके लिए मुझे कितना पुरुषार्थ करना है, मुस्कुराते रहने के लिए कितनी स्मृतियां रखनी है, कितनी चीजों को भुला देना है और तब मुस्कुराते रह सकते हैं। तो हमारी अगर मनसा वाचा कर्मणा एक लाइन में रहेगी तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। हम जो ज्ञान दूसरों को सुना रहे हैं वो हमारे अंदर प्रैक्टिकल में हो हमारे जीवन में। तो बाबा ने कहा है कि 108 के चिंता नहीं करना कि भाई इतने पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतने सीनियर्स बैठे हुए हैं, इतनी तपस्या की हुई है, इतनी सेवाएं की हुई है, हम तो अभी अभी ज्ञान में आए हैं, हम 108 में कैसे आ सकते हैं। बाबा कहे वो चिंता मेरी है ना 108 की माला, आप तो पुरुषार्थ करो, मैं लड़िया और लगा दूंगा उसमें, वो तो भगवान है वो कुछ भी कर देगा, लेकिन हम केवल पुरुषार्थ करें उसके लिए बस, तो हो जाएगा।
बहुत अच्छा, बहुत सरल भाषा में सरल शब्दों में हमें भाई जी ने रास्ता बताया कि कैसे हम 108 की माला में आ सकते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ कह के हमें डरना नहीं है, बहुत सरल सरल बातें जो भाई जी ने हमें बताई है उसको ध्यान में भी रखेंगे तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। भाई जी अभी हमारे पास और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे बाबा भी बोलते कि बच्चे बाबा को यदि सच कोई भी पाप कर्म होता है और बाबा को यदि सच लिख देते हैं तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आधा माफ हो जाता है, यदि आधा माफ हो जाता है तो उसकी निशानियां क्या है।
ये एक विधि बाबा ने बताई है देखिए सबसे पहले तो कुछ विकर्म होता है तो मन खाता है, अंदर से मन भारी रहता है। विकर्म हुआ उसकी निशानी यह है कि मन जो है वो भारी रहेगा, कि नहीं ये श्रीमत के प्रमाण नहीं हुआ जिससे भारी रहेगा। और जब हमें इसका रियलाइजेशन हो जाएगा, कभी कभी अगर रियलाइज नहीं होता है तो हमको जैसे लगता ही नहीं कि ये कोई हमारे से भूल हुई है, केवल एक आत्मा में सटल रूप से बोझ चढ़ता रहता है जो क्या करेगा, ज्ञान से दूर कर देगा। फिर ऑटोमेटिक एक ये सिस्टम ही बना हुआ है इंटरनल अंदर, कि जब छोटे छोटे विकर्म होते रहेंगे, बोझ चढ़ता रहेगा, तो धीरे धीरे वो ज्ञान से दूर हो जाएगा, परमात्मा से बाबा से जो है उसका बुद्धि योग कम हो जाएगा, धीरे धीरे वो दूर जैसे एक दूर फील करता रहेगा। और जैसे उसका रियलाइजेशन होता है तो तुरंत मन पर भारीपना लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत हुई, ये नहीं होने चाहिए था। उस समय अगर हम उसको लिख लेते हैं या हमारे जो निमित्त हैं, निमित्त टीचर, दादी, बड़े साकार में जब बाबा थे तब, उनके सामने हम अगर बता देते हैं तो उससे क्या होता है कि मन का जो भारीपना है वो हल्का हो जाएगा, एक विश्वास के कारण। एक साइकोलॉजी काम करती है इसके पीछे कि ये हमने बता दिया तो वो हल्का हो गया, लेकिन उसके बाद की प्रोसेस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बता दिया तो 50% कम हो गया, चलो दूसरा एक और कर लें फिर बता देंगे तो 50% कम हो जाएगा, वो नहीं। उसके लिए मम्मा की एक बात याद रखनी पड़ेगी जो मम्मा के जीवन की धारणा थी खास, एक गलती एक ही बार होती थी मम्मा से। अगर मम्मा से कुछ गलती हो भी गई, बाबा ने इशारा दे भी दिया तो वो फुल एंड फाइनल होता था, वो उसके बाद वो गलती कभी रिपीट नहीं होती। लेकिन जेल बर्ड की तरह जेल में से बाहर निकले और फिर गुनाह किया, फिर जेल में गए, फिर जेल से बाहर निकले, गुनाह किया, जेल में गए, तो इस प्रकार से नहीं। बताने से आधा माफ तभी होता है कि जब हम आगे के लिए उसको फुल स्टॉप लगा देते हैं कि हाँ अब से ये गलती हमको नहीं करनी, और जो बाकी का आधा बचा है उसको योग बल के द्वारा भस्म करना है। वो लक्ष्य रख के हम योग करें खास तो ये होता है। और उसकी निशानी है, पहली बात तो मन हल्का हो जाएगा, फिर बाबा के साथ कनेक्शन अच्छा से जुट जाएगा, एक पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाएगी, उमंग उत्साह जो कम हो गया था उस भूल के कारण वो वापिस उमंग उत्साह आएगा, आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, सेवा करने के लिए उमंग उत्साह आएगा, खुशी का पारा भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा जो डाउन हो गया था वो। ये इसकी कुछ निशानियां है कि हाँ सचमुच आधा माफ हुआ।
बहुत खूब, बहुत ही सुंदर शब्द में आपने बताया कि कैसे आधा माफ होता है, इसका जो राज है वो यह है। तो आगे का क्वेश्चन यह है भाई जी, विकर्म विनाश के लिए योग कैसे और कितने समय और कौन से समय पर करना चाहिए, और विकर्म विनाश हुआ कि नहीं वो कैसे पहचान सकते हैं, कैसे करें, कितने समय, कौन से समय, और पहचान कैसे सकते हैं विकर्म विनाश कैसे हुए।
बाबा ने योग के लिए कुछ अलग अलग बातें बताई है, उसमें एक बात तो जो लगभग प्रत्येक मुरली में आती है, रोज सुनते हैं हम मुरली में, कि बाप को निरंतर याद करना। इसमें अब टाइम का क्वेश्चन तो रहता ही नहीं। निरंतर याद करना माना कनेक्शन जुटा हुआ ही हो बाबा के साथ, चालू ही हो। ये एक बिल्कुल जैसे बाबा की रोज की डायरेक्शन की बात है, और रेगुलर प्रोग्रेस के लिए वो जरूरी है। लेकिन अगर विकर्म विनाश की बात है तो उसके लिए विशेष रूप से हमको एक सप्ताह कम से कम, 21 दिन करे तो बहुत अच्छा, लेकिन एक सप्ताह तो जरूर कम से कम, कोई भी निश्चित समय जो अपनी दिनचर्या में अच्छी तरह सेट होता हो। वैसे तो सुबह का समय बहुत अच्छा होता है या फिर नुमा शाम के समय का, लेकिन जैसी आपकी दिनचर्या में सेट होता हो वो कोई भी समय निकाल के, चाहे 5 मिनट भी चाहे 15 मिनट भी, विशेष रूप से बैठे उसी के लिए। और उसमें और कुछ नहीं करना है, कोई वो विकर्म विनाश के लिए उस विकर्म को याद नहीं करना है हमको, लेकिन वो 5 मिनट 15 मिनट जितना समय आप निकाल के फिक्स करके बैठो, उस समय एक थॉट में रहने का अभ्यास करना है कि बस मैं ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ आत्मा में, आत्मा पे पड़ रही है, और आत्मा का जो कालापन है वो दूर होके आत्मा चमक रही है, आत्मा चमकती जा रही है, आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है, वो एक अभ्यास उस समय हम विशेष करें। जैसे हम वो जो ग्लास, मैग्नीफायर ग्लास लेते हैं और कागज रख के धूप कर सामने वो रखते हैं तो क्या होता है, सूरज की किरणें उस पर कंसंट्रेट होती है तो नीचे का कागज जो है वो जलने लगता है। तो उस प्रकार से उस 5 मिनट में, 10 मिनट में या 15 मिनट के टाइम में हम केवल बस वो ज्ञान सूर्य से किरणें लें और वो किरणें उस कागज पर, जैसे आत्मा रूपी जो कागज है उस पर वो किरणें आए और उसमें से कीचड़ा जो है वो जलता रहे, आत्मा एकदम शाइनिंग बनती जाए, एकदम जैसे शाइन करने लगे, आत्मा चमकने लगे, वो अभ्यास करें हम उस पीरियड में। वो अपनी अनुकूलता के हिसाब से आप फिक्स करें ताकि आप उस समय निश्चिंत होकर बैठ सके, मोबाइल स्विच ऑफ कर ले, ये करके एक विशेष रूप से एक ही अटेंशन के साथ, एक ही थॉट के साथ बैठे, और ज़्यादा से ज़्यादा उस अभ्यास, उस मतलब संकल्प का ही अभ्यास करें कि बाबा से, ज्ञान सूर्य से किरणें आ रही हैं, बहुत शक्तिशाली किरणें आ रही हैं और मुझे आत्मा को वो प्योर करती जा रही है।
बहुत खूब भाई जी ने बहुत अच्छे सरल शब्दों में बताया हमें कि कैसे योग कैसे करें, निरंतर करें, और ज्ञान सूर्य की किरणों से उसे कैसे डिस्ट्रॉय करना है, वो बहुत सुंदर विधि आपने हमें बताई सचमुच। हाँ, उसकी निशानी क्या होगी भाई जी?
निशानियाँ तो इसके पहले वाले प्रश्न में बताई थी।
हाँ, उनको उमंग उत्साह रहेगा, खुशी बढ़ेगी,
भारीपन कम हो जाएगा, और मतलब एक आपको अलग से हल्केपन का अनुभव होता है उसमें, क्योंकि विकर्म कोई हम माथे पर बोझ लेकर नहीं जा रहे हैं कि भाई कोई किसी ने 1 क्विंटल का वजन रख दिया है और हम जा रहे हैं वैसे, लेकिन मन में जो व्यर्थ संकल्पों का आना जो होता है, नेगेटिव संकल्पों का आना, व्यर्थ संकल्पों का आना, यही विकर्म की सजा अभी जो मिलती है। और जो हमको बाबा गिफ्ट देता है, बाबा कहता है कि बच्चे, जो बच्चे ये 6 मास का या 1 मास का ये पुरुषार्थ करेंगे बाबा उसको गिफ्ट देगा, अव्यक्त मुरली में बहुत बार बाबा कहते हैं। अच्छा बच्चे कौन हाथ खड़ा करेंगे, जो भी करेगा बाबा उसको एक गिफ्ट देगा। बाबा क्या गिफ्ट देता है? यही गिफ्ट देता है कि मन में एक अतीन्द्रिय सुख की आत्मा अनुभूति करे, वो एक बड़ी गिफ्ट होती है बाबा की ओर से। तो हम जब ये विकर्म विनाश हमारा होता है तो मन पॉजिटिव ही रहता है, श्रेष्ठ संकल्प ही उसमें चलते हैं, व्यर्थ या नेगेटिव उसमें खत्म हो जाता है, और एक अतीन्द्रिय सुख की जो अनुभूति होती है, उसके बाद वो एक निशानी मैं समझता हूँ उसमें विकर्म विनाश की है। और आपके कोई ध्यान में आ रहा है तो आप भी बताइए। वही ना, व्यर्थ और नेगेटिव वो थॉट नहीं चले, पॉजिटिव ही थॉट चलते रहे तो ही हमको वो खुशी का अनुभव होता है और यह होता है कि भाई हाँ उससे हम दूर हो गए।
बहुत बहुत सही बताया भाई जी आपने कि कैसे विकर्म की हमें जैसे कि अविद्या हो जाए,
अविद्या हो जाए
ऐसे ही इसका मतलब है। तो आगे की श्रृंखला को बढ़ाते हुए सभी को मजा आ रहा है ना? हाँ, तो आगे बढ़ाते रहे ना। हाँ, बहुत खूब, धन्यवाद। अभी हमारे सामने एक प्रश्न आ रहा है, आज भी बाबा ने बताया कि माया जो है बच्चों को ग्राहक बनाती है। तो वो कैसे ग्राहक बनाती है? तो माया के भाई जी वो सूक्ष्म रूप कौन से हैं जिससे हम दूर रह सकें?
माया के सूक्ष्म रूपों का तो मेरे साथ आप लोगों को भी अनुभव बहुत होता होगा। इस पे तो पूरा वर्कशॉप कर सकते हैं माया के सूक्ष्म रूपों का। हम ब्राह्मण बनने के बाद जो बड़े रूप के माया के जो बड़े रूप हैं जिनको बाबा ने पांच महाविकार के रूप में जो बताया हुआ है उस पर तो हमारा अटेंशन होता है कि भाई ये हम कहीं भी हमारे जीवन में नहीं आने चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और उनके मोटे मोटे रूप से तो हम उनको छोड़ भी देते हैं या उनके वशीभूत नहीं होते हैं या उनका आक्रमण होता है तो एक तुरंत लाइट हो जाती है कि हाँ नहीं ये बड़े रूप का आक्रमण है, मुझे बचना है इससे, और हम दूर हो जाते हैं। लेकिन इसके जो छोटे रूप है ना, महीन रूप जिनको अंश कहेंगे, वो उनका स्वरूप चूंकि वो सूक्ष्म होता है तो उनकी पहचान भी हमें महीन बुद्धि से करनी पड़ती है। ये बुद्धि का एक रूप है, महीन बुद्धि। उस महीन बुद्धि के द्वारा ही उसकी पहचान होती है। जैसे कोई कुमार है और वो ये सोचता है कि नहीं ये कुमारी जो है ये इसको बहुत बंधन है, इनको बहुत तकलीफ पड़ रही है, इसको मुझे मदद करनी चाहिए, और वो अपनी रीति अपने ही लेवल पर जैसे उनको मदद करते हैं, कुछ भी निमित्त को बताए बगैर या निमित्त को ध्यान में नहीं हो, जो निमित्त टीचर हैं उनको पता नहीं हो, और कि भाई अब वो बाहर का रूप तो मदद का है कि भाई हम मदद कर रहे हैं उनको सब, पर उसमें जो श्रीमत का उल्लंघन हुआ है कि जो निमित्त टीचर को बता के जो चीज करनी चाहिए थी वो अपनी मन मर्जी से किया है, वो एक माया का सूक्ष्म रूप है जो इमीडिएट पता नहीं चलता है। इमीडिएट तो सब भाव अच्छे, दोनों के भाव अच्छे होते हैं, लेकिन फिर आगे चल के उसका स्वरूप बदलता जाता है और वो फिर उसको कहते हैं ना एक बंधन का रूप बनता जाता है। ये तो एक एग्जाम्पल बताया, लेकिन इसी में सब जो लोभ की भी बात है, मोह की भी बात है या क्रोध की भी बात है, क्रोध का छोटा रूप इरिटेशन। हमको कोई यहां आके बैठा है तुरंत संकल्प जाए इसको ऐसे कैसे बैठा, ऐसे थोड़े बैठना चाहिए, बोला नहीं कुछ हमने, लेकिन जो संकल्प चले मन में जो थोड़ा इरिटेशन हुआ वो भी क्रोध का छोटा रूप है, सूक्ष्म रूप अंश है। कर्मेंद्रियां सर्व कर्मेंद्रिया हमारी इतनी शीतल हो, बिल्कुल शीतल हो जाए और उसकी निशानी है कि जो हमारे थॉट्स हैं वो बहुत शांत और कम हो जाएंगे, जल्दी जल्दी थॉट्स नहीं चले, एकदम शांति से हो जाएगा, कर रहे हैं। ये एक्चुअली ये सब चीज जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सूक्ष्म रूप की बात जो प्रश्न पूछा है, ये बहुत महीनता से चेक करना पड़ता है। उसके लिए एकाग्रता भी चाहिए, थोड़ा योग का बल भी चाहिए, तब वो महीनता आती है बुद्धि में, नहीं तो उन सूक्ष्म रूपों का पता भी नहीं चल पाता है कि ये सूक्ष्म रूप में कहाँ हमको उलझाए हुए। बाबा ने बोला कि बड़े बड़े जो लोहे की जंजीरें थी वो तो तोड़ दी हमने, लेकिन सोने के धागे में बंधे हुए हैं अभी हम, पर चूंकि सोना है इसलिए अच्छा लग रहा है वो, तो सोने के धागे में बंधे हुए। उन सूक्ष्म रूपों को पहचानना है, उसके लिए थोड़ा योग का प्रयोग, और आज जो बाबा की मुरली में था परखने की शक्ति, उसका प्रयोग हमको करना पड़ेगा।
बहुत अच्छा भाई जी, कि कैसे माया के महीन रूप को भी हमें समझ में आना चाहिए, ये भी भाई ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है, और कैसे योग बल की भी हमें बहुत बहुत आवश्यकता है, तो उससे हम माया के ऊपर, माया के सूक्ष्म रूपों को हम खत्म कर सकते हैं। तो भाई जी 22 मार्च 2013 को बाबा ने व्रत के ऊपर बहुत अच्छी मुरली चलाई थी, भगवान और भाग्य की स्मृति सदा रहो, हर्षित रहो, हर्षित बनाओ और व्यर्थ बातों को होली कर होली बनो। तो आज ब्राह्मण जीवन में भी हम देखते हैं कि मनसा वाचा द्वारा अनेक व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो उस व्यर्थ संकल्पों को कैसे खत्म हम कर सकते हैं, तो वो आप भी अपने पुरुषार्थ के द्वारा हम सबको थोड़ा अवगत कराएं।
व्यर्थ संकल्प पैदा होने के अनेक कारण होते हैं। देखिए आप, एक बहुत अच्छी प्रोसेस है इसमें। आपने फ्लोर मिल देखी होगी, आटा चक्की, आटा निकलता है, गेहूं का आटा निकला तो उसमें हमने डाला क्या होगा, ऊपर से गेहूं ही डाला होगा तो गेहूं का आटा निकलेगा, चना डालेंगे तो चने का आटा निकलेगा, और सोयाबीन डालेंगे तो सोयाबीन का आटा निकलेगा। मन एक फैक्ट्री है, फ्लोर मिल है, संकल्प एक आटा है, वो कैसा निकलेगा जैसा उसमें हम डालेंगे वैसा निकलेगा। डालते कहां से हैं ये समझने की बात है, कि हम डालते कहां से हैं, निकलने का स्थान पता है कि हाँ वो मन से निकल रहा है, फ्लोर मिल वहां है, लेकिन उसमें डालते कहां से हैं, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख नाक कान जीभ और त्वचा, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां है, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो सूचनाएं हम अंदर भेजते हैं, उन अंदर भेजी गई सूचनाओं को थोड़ा संस्कारों का रंग मिलता है उसमें, और वो संकल्प के रूप में, प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बाहर आती है। आपने अखबार खोला, अखबार खोलते ही जो फोटो सामने देखा, क्या हुई, सूचना अंदर गई, सूचना मन तक पहुंची, सूचना मन तक पहुंचते ही अंदर जो स्टोर्ड सूचनाएं हैं जिनको हम संस्कारों का रूप कहते हैं, उन्होंने उसको टच किया। टच करते ही अंदर एक फाइल खुली जो उस सूचना से संबंधित थी और उस प्रकार के संकल्प चले। ये एक सूक्ष्म प्रोसेस है, आप देखना। वो फोटो देखते ही, वही फोटो आप हम में से हर एक देखेंगे, एक कोई भी कॉमन फोटो अगर जैसे न्यूज़पेपर का यहाँ लाके में सामने बताऊं, उसको देख के आप सबके मन में अलग अलग प्रकार की संकल्प चल सकते हैं। तो एक तो है सूचना और दूसरा है अंदर जो संस्कार है बने हुए हैं, वो दोनों के ब्लेंडिंग से वो संकल्प आते हैं। तो दो जगह हमको चेंज करना है, उसमें हमको व्यर्थ से मुक्त होना है तो दो जगह चेंज करना है। एक चेंज जो हमारे इमीडिएट हाथ में है और जो हम इजीली कर सकते हैं, वो है इन सूचनाओं का प्योरिफिकेशन, कि जितना हो सके जितना संभव हो हम पॉजिटिव प्योर पावरफुल अच्छी सकारात्मक सूचनाएं ही अंदर जाने देवे। भक्ति में पता नहीं था तो सूरदास ने आंखें फोड़ दी अपनी, क्योंकि सूचना जाने का एक मुख्य केंद्र आंखें है, पांचों में से भी मुख्य केंद्र आंखें है जहां से सूचनाएं अंदर जाती है। तो उसने कहा आंखें ही फोड़ दो ना, झंझट ही नहीं। लेकिन बाबा ने हमको क्या कहा है, देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, और उसके लिए हमें आत्मिक अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे आप किसी के घर पे गए, आजकल टीवी तो कॉमन है सामने, सबसे पहले वो व्यक्ति का दर्शन बाद में होगा, टीवी का दर्शन पहले हो जाएगा जाते ही अंदर गेट में आप गए कमरे में, और प्रायः चालू ही होती है क्योंकि बच्चे को कोई शो पसंद होता है, बूढ़े को कोई शो पसंद होता है, दूसरों के मेंबर को कोई शो पसंद होता है, हर एक अपना लगाता रहता है लेकिन चालू ही होती है। अब आपको 5 मिनट भले उनसे ऐसे ही आप मिलने गए, बीमार थे तो मिलने गए, कुछ काम था तो मिलने गए, किसी भी काम से आप गए उनके पास, जाके बैठे टीवी चालू है, कोई ऐसी टीवी पर जो चल रहा है वो ऐसा है जो आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अंदर नहीं जाने देना है, तो क्या करें, देखते हुए नहीं देखने का पार्ट कैसे प्ले करें उसमें। अब कंपलसरी आपको जहाँ बैठने की जगह दी उसके सामने ही टीवी है, तो आप ऐसे तो नहीं बैठ सकते वहाँ पे उनके सामने जाए, हाँ आप बोलो अभी मैं सुन रहा हूँ या मैं बोलो आप सुनो, ऐसा तो नहीं कर सकते। हम बैठे भी टीवी के सामने ही है, हमको अंदर भी नहीं जाने देना है, वो देखते हुए भी नहीं देखने के अवस्था में रहना है, तो क्या कर। मेरा जो पर्सनल अभ्यास मैंने किया हुआ है वो है आत्मिक अवस्था का अभ्यास, हम खुद पॉइंट ऑफ लाइट में रहे वो 5 मिनट विशेष अभ्यास करें, जिनसे हम मिलने गए जो हमारे सामने हैं उनको भी हम पॉइंट ऑफ लाइट में रहें, और जो अगर हमारी नज़र टीवी पे पड़ती है और टीवी में जो भी आ रहा है उसको भी हम पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में ही देखें। आप ये अभ्यास करके देखना प्रैक्टिकली, आप देखेंगे कि जब आप उस स्थान को छोड़ के जाएंगे उसके कुछ समय बाद आपकी जो स्लेट है मन की स्लेट उस पर वो इमेज नहीं छपेगी। वो जैसे एक दूर की बात कोई याद आ गई और चली गई ऐसा करके हो जाएगा, लेकिन उस पर एक इम्प्रेशन नहीं होगी उस स्लेट पर। आत्मिक अभ्यास से ये होगा, कोई आपको कुछ बोल रहा है, ऐसी चीज़ बोल रहा है जो आपको हो सकता है उसका बहुत दुख हो आपको, वो सब आपको पता है कि ये मुझे अभी कुछ बहुत कुछ बोल देने वाला है, उस समय आप देखो एकदम से आप आत्मिक अवस्था में आ जाइए, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास कीजिए। वो बोल देगा 2 मिनट तक अच्छी तरह से आपको बोल देगा वो, लेकिन आप पर कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ेगी उसकी, आपके मन में उसके प्रति कटु भाव उत्पन्न नहीं होगा। तो इन जो 5 इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनसे अंदर जाने वाली सूचनाओं को हम प्योरीफाई कर देवे और संस्कार परिवर्तन, वो एक लंबी प्रोसेस है लेकिन उसके लिए अभ्यास करते रहे। तो संकल्प जो है वो पॉजिटिव, शक्तिशाली और श्रीमत अनुसार चलने लगेंगे, व्यर्थ जो है वो खत्म हो जाएगी।
ये प्रोसेस बहुत खूब। यह आंसर सुनते समय आत्मन भी बड़ा खुश हो रहा था कि उसको भी एक बहुत अच्छी चाबी मिल गई है। मानो गलती से भी वो कभी टीवी देख लेगा तो वो अभी आत्मिक रूप में ही देखेगा, तो वो हंस रहा था मैं जब देख रहा था उसको। तो बहुत खूब भाई जी, ये अपने बहुत ही सरल भाषा में, सरल उदाहरणों के द्वारा हमें अवगत कराया और जो बताया कि इनपुट ही हमारा फिल्टर हो, ये हमारा माइंड जो है फ्लोर मिल की तरह है, तो उसमें संकल्प रूपी आटे को अच्छा शुद्ध बनाना है। आज सभी अच्छा ही शुद्ध आटा ही खाना चाहते हैं, है ना। आजकल कितने सारे आटे आ गए मार्केट में, वो हमारे कारण से ही शायद वो आटे इतने रिफाइन बन रहे हैं। तो बिल्कुल बाबा ने वे बात बहुत सुंदर रीति से भाई जी ने बताया।
तो बिपिन भाई जी भी, और कभी आप उनसे भी रूरियान करना, वो तो साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल,
हमें तो आपका एक सेशन ले सकते हैं इस पे कि हम कैसे
जरूर ये सभी
का ये प्योरिफिकेशन करें
विचार। बिल्कुल, वो आगे और श्रृंखला को आगे रखते हुए बहुत सुंदर क्वेश्चन अभी हम आपके सामने ला रहे हैं। वो है कि बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तो बाबा के जो नए नए बच्चे बंधे हैं तो उनके पास तो इतना समय नहीं है बहुत काल का, लेकिन जो पुराने बच्चे उनके पास तो अच्छा समय था। तो भाई जी आप इसके ऊपर क्या प्रकाश थोड़ा डालें, हम बच्चों को थोड़ा अवगत कराएं।
बहुत काल का अभ्यास ये बाबा को इसलिए बोलना पड़ा खास कि बहुत बच्चे जो अपने आप को थोड़ा होशियार समझते हैं उनको, या थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं अपने आप को, तो वो ये सोचते हैं कि बस यही करना है ना, नष्टो मोह का ही पेपर है ना, तो वो तो जैसे ही विनाश सामने आएगा मैं तुरंत नष्टो मोह सब कुछ छोड़ दूंगा, सब छोड़ के मैं चला जाऊंगा, नष्टो मोह बन जाऊंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। उस समय मैं सारा कुछ सफल कर दूंगा, जैसे ही मुझे, क्योंकि कोई ऐसे तो है नहीं विनाश का, जैसे तूफान आ रहा था तो भी 48 घंटे पहले से पता चल गया कि भाई तूफान आ रहा है, तो ऐसे कुछ तो इंडिकेशन मिलेगा ही मिलेगा, तो मैं उस समय सब कुछ सफल कर दूंगा। तो और उस समय मैं सारा दिन योग के अलावा और कुछ भी नहीं करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि रिजल्ट तो वही मिलेगा ना, जो अंत में मेरे को जो स्मृति रहेगी वही रिजल्ट मिलेगा, तो अंत में मैं जो है बहुत पुरुषार्थ कर लूंगा तो हो जाएगा। लेकिन देखा ये गया है जो कैसेट पूरे जिंदगी में हम भरते हैं लास्ट में वही बजती है, उस समय नई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। जब समय आता है, अंतिम समय आता है, तब नई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। मैंने देखा बहुत से जो उम्र लायक व्यक्ति हो जाते हैं 70-80 की एज में या उसके ऊपर की एज में पहुंच जाते हैं, वो थोड़ा इरिटेट होने का जैसे उनको वो हो जाता है, बहुत से भाई बहन ऐसे जो इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन इसके सामने मैंने दादियों को देखा है, 85-90 में देखा कितनी बातें उनके सामने आती है, कितना क्या होता है, लेकिन हंस रही है, मुस्कुरा रही है, एक जैसे निश्चिंत है। तो तब देख के आता है कि इन्होंने सारी उम्र जो मुस्कुराने का अभ्यास किया, सारी उम्र जो फुल स्टॉप लगाने का जो अभ्यास किया है, उसके कारण से आज बच्चे कितनी भी शैतानी कर रहे हैं उनके सामने, लेकिन वो शांत है, मुस्कुरा रही, इरिटेशन नहीं हो रहा है उनको। तो जो बहुत काल का अभ्यास होगा, लंबे समय का अभ्यास होगा, तो ही हम अंत समय उस चीज को प्रैक्टिकल ला सकेंगे। अब जहां तक पर्सनल जीवन की बात है कि कोई ज्ञान में एक साल से आया, कोई दो साल से आया, कोई चार साल से आया, तो ये बाबा का वायदा है। ये बाबा का वायदा है कि हरेक को न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा मतलब अगर सपोज विनाश के एक साल पहले ही कोई ज्ञान में आया तो उसको भी उस एक साल में इतना चांस मिलेगा कि वो 108 में आ सकता है। क्योंकि ड्रामा की जो चार विशेषताएं हैं, ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, फिक्स है, और चौथा है ड्रामा न्यायी है, वो जस्टिफाई करता है सबके साथ, अनजस्टिस किसी के साथ नहीं करता है। तो जस्टिफाई करता है तो कल उठ के ड्रामा को कोई ब्लेम नहीं कर सकता है कि अगर मैं भी पहले ज्ञान में आया हुआ होता तो मैं भी ये पद प्राप्त कर लेता, मुझे एक साल ही क्यों मिला। यहां पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं है, पर जो अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही है उसको हमने कितना जीवन में लाया है प्रैक्टिकल। सपोज आपको 100 अपॉर्चुनिटी वो अवसर मिला और उन 100 अवसरों को आपने पूरा का पूरा जीवन में लाया है, तो ये आपके बहुत काल का अभ्यास हो गया। लेकिन आपको 25 साल मिला और 25 साल में आपको 100 अवसर मिले और 100 अवसर में भी आपने उसमें 10-20 अवसर को ही जो ऐसा है कि जिससे आपने प्रैक्टिकल लाया, तो वो बहुत काल का अभ्यास नहीं गिना जाएगा, भले 25 साल ज्ञान में हो गए। लेकिन जितना भी पीरियड आपको मिला है उसमें से आपने सफल कितना किया है वो बहुत काल माना जाएगा। इसलिए आप ये नहीं सोचे कि 50 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से ज्ञान में होना जरूरी है, वो नहीं। लेकिन जब से ज्ञान मिला है तब से हमने समय को कितना सफल किया है, तब से हम श्रीमत पर कितना चले हैं, रेशियो में मिल जाएगा, रिटर्न रेशियो में मिल जाएगा आपको। 10 साल वाला अगर 20% ही श्रीमत पर चला है तो उसको 20% ही फल मिलने वाला, और आप एक साल में अगर 80% श्रीमत पर चले तो आपको 80% फल मिल जाएगा। क्योंकि ड्रामा वो अन्याय नहीं कर सकता किसी के साथ, उसकी एक विशेषता ही है कि ड्रामा सबके साथ न्याय करता है। इसलिए ये बहुत काल का अभ्यास से मैं ये समझता हूं। मैंने इस पे विश्व रतन दादाजी के साथ भी अच्छी चर्चा किया और इसी पर मैंने वो गोडली बैंक का वो भी बनाया कि कैसे गोडली बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट अकाउंट्स कैसे कैसे अलग अलग होते हैं और उसमें हम डिपॉजिट कर सकते हैं। कभी समय मिला तो हम उसका भी लेंगे, अभ्यास करेंगे वापिस। वैसे तो एक बार यहाँ कराया था, एक बार तो कराया।
बिल्कुल बिल्कुल
करें सर। शाम को हमारा ट्रेनिंग चल रहा है जो जिसके लिए हम आए हुए हैं, वहाँ शाम को ही सेशन चलता है, 8 बजे तक सेशन होता है। इसलिए भले मुझे हर्जा नहीं है, मैं तो बोलूंगा, लेकिन
नहीं, मैंने
8 बजे तक तो
मैं वो क्लास थोड़ी सी सुनी है मैंने भाई जी की, वहाँ पर अपना वेबसाइट से मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन वो प्रैक्टिकल में हम सुनना चाहते भाई जी, हम सभी सुनना चाहते हैं। तो सभी रेडी हैं कल आने के लिए?
मैं बताऊं, वो गोडली, आपने गोडली बैंक का क्लास किस किसने सुना हुआ है यहाँ पे, गोडली बैंक वाला क्लास? अच्छा, 2-3 नहीं सुना है। क्यों, पहले तो सुनाया था यहाँ, लेकिन उस समय सब नहीं होंगे
वो ट्रांसफर नहीं, हम सुनना चाहते हैं और हमारे सारे भाई बहन भी सुनना चाहते हैं।
ये पूरा है कि कैसे हमारे हर कर्म का, विचारों का, बोल का प्रैक्टिकल डिपॉजिट, जैसे बैंक में हम जाते हैं डिपॉजिट करने, वैसे किस प्रकार से डिपॉजिट होता है और उस डिपॉजिट से कैसे यूज हो जाता है, कम बैलेंस कम कैसे हो जाता है, नेट बैलेंस कितना रहता है, वो हम कैसे चेक करें, ये चीजें आदि पूरा उसमें बताया है कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, FD अकाउंट में कैसे जमा होता है, कैसे में से उसमें से निकाल सकते हैं, ये सब चीजें उसमें होता है। तो विशेष एक बात हम आपको और बता दें इस संदर्भ में कि आज 20 तारीख हो गई है, 24 तारीख को इस सीजन में पहली बार बाबा की पदरामणी होने वाली है।
अरे
तो बहुत कम समय रह गया है कि जब हम परमात्मा की इस पदरामणी से पहले हमारी ज्ञान योग्य अवस्था को हम इतना अच्छा बनावे कि बाबा जो बात कहने वाले हैं उसको हम यथार्थ रूप से समझ सकें, उसकी डेप्थ को, इसके लिए हमें अभ्यास करना है। जैसे नया एग्ज़ाम, क्या कहते हैं ना, एग्ज़ाम का समय आ गया, इस प्रकार से अभी ये समय आ गया है तो हमको उसका विशेष अभ्यास करना है।
कल आएंगे सभी, बिल्कुल, तो कल हम सभी 8:30 बजे।
और भी आप अगर लाना है, क्योंकि वो एक ऐसा जनरल क्लास जैसा है कि जिसमें आप और भी किसी को लाना चाहो तो ला सकते हो, अपने मित्र या परिवार वालों को किसी को लाना चाहो तो भी आप ला सकते हो।
उसको सुनने से हमारी बुद्धि और विशाल हो जाती है। मैंने थोड़ा ही सुना है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा वो क्लास, तो हम सभी जरूर सुनेंगे भाई जी। और इस श्रृंखला को आगे चलाते हुए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है भाई जी, बाबा के जो इस ज्ञान में है, हमें 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो भाई जी आप बेहद सेवाओं में रहते हो, तो ऐसी कौन सी सेवा है भाई जी जिसमें हमें ज्यादा मार्ग मिले और हम अपना भाग्य और अच्छा बना ले?
मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से एक बात बताऊं तो जब मैं ज्ञान में आया, ब्रह्मा कुमारीज की आए मुझे पता भी नहीं था, पाठशाला, गीता पाठशाला में कोर्स किया, सेंटर तो बहुत बाद में देखा मैंने, बहनों से बहुत बाद में मिला मैं, सेवाएं क्या होती है वो भी मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन बाबा की मुरलियों से एक शब्द मैंने जो पक्का किया था वो था हाँ जी का। हाँ जी का पाठ पक्का किया था तो निमित बहन जी जो सेवा देते थे हाँ जी करके कर लेता था। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया था और सेंटर पर, उस समय में महादेव नगर सेंटर पर वहाँ जाता था, तो सेंटर पर भी पता था चार्टर्ड अकाउंटेंट में हूँ वो सब, लेकिन मुझे कभी ये संकल्प नहीं आया कि मैं यहाँ के अकाउंट की सेवा करूँ या अकाउंट देखूँ। मुझे पता ही नहीं था कि अकाउंट वहाँ लिखते भी होंगे, क्या करते होंगे, क्या नहीं, कभी बुद्धि उसमें गई नहीं। ज्ञान योग किया आपने और बहन जी ने बोला, फिर कभी जैसे प्रदर्शनी लगाई, झांकी लगाई, तो ये शरीर की लंबाई का फायदा लेके वो झांकी सजाना, प्रदर्शनी सजाना, ये सेवाएं, या बहनें किचन में डिब्बे उतारने के लिए बुलवा लेती थी ऊपर से, तो डिब्बे उतारना या पर्दे लगाना या ये सब सेवाएं चलती थी। माने कोई सेवा मुझे करनी है या यही सेवा करनी है ये कभी संकल्प ही नहीं रहा मुझे कि ये सेवा अच्छी होती है, ये नहीं होती है, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसी कोई बात ही नहीं। जो चीज़ सामने आया और जो कहा वो कर लिया, बस ये बात पूरी हो जाती है। यहाँ पे वहीं से वहाँ जब अकाउंट्स चल रहा था, अकाउंट्स का लोटस का बन रहा था और उसका अकाउंट एक दादा संभालते थे, मैन्युअली रखते थे, वो बहुत बड़ा हिसाब था, उनसे टैली नहीं हो रहा था, तो फिर बहन जी ने मुझे बोला आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप ये जरा बैलेंस टैली कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस समय घर का भी बहुत बंधन था मेरा, मेरी दादी मेरे साथ रहती थी, वो सेंटर पर जाने नहीं देती थी मुझे, मुश्किल से मैं क्लास करने जाता था, दिन में जॉब करता था, फिर रात को आके, फिर जॉब से आके घर पे जाके भोजन करके फिर कहता था कि भाई मुझे अभी थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना है, थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, एक्स्ट्रा काम करना है, फिर मैं निकल के आता था, फिर रात को बैठ के सेंटर पर वो अकाउंट टैली करता था, पूरा टैली रात को बैठ के टैली करता था, फिर सुबह 5 बजे घर जाता था ऐसा कि हमको रात भर, और उसको पता था कि हाँ इनकी ऑडिट और चलती है तो रात भर काम करते हैं, इतना दादी को पता था कि ये ऑडिट जब चलती है तो रात भर इनको काम करना पड़ता है। तो मैंने कहा ऐसा काम चल रहा है मेरा तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैं बैठ के वो सेवा किया, और वो सेवा जो किया वही धीरे 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 मुझे आगे आगे सेवा मिलती गई। आज मधुवन में बैठ के सेवा कर रहा हूँ। तो कहने का भाव ये है कि सेवा ये बाबा का सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बाबा ऑटोमेटिक कराता है। हम केवल कठपुतली बन के रहे बस, सेवा का जहाँ तक सब्जेक्ट है हम पपेट बन के रहे, बाबा जैसे नचाना चाहे, हमारी डोर उसके अंगुलियों में हो, वो जिस प्रकार से जैसे नचाना चाहे हम निश्चिंत हो के नाचे, वो करता रहेगा। और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि अगर हम सचमुच पपेट होके रहते हैं तो वो इतनी कराता है सेवा और इतना रिजल्ट देता है, हम कल्पना नहीं कर सकते। एक सपना लगता है उसके बाद कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है, एक छोटा सा गांव कि जहाँ बस भी नहीं जाती, 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, 10वीं तक स्कूल था, उस छोटे से गांव में खेती का काम करने वाला मैं, और कहाँ बाबा ने कैसे कैसे मुझे ट्रेनिंग दे के कहाँ से कहाँ तक ले जाके आज क्या सेवा करा रहा है। ये सेवा का पूछा इसलिए मुझे वो सब पूरा पिक्चर मेरे सामने आ रहा है कि कैसे बाबा क्या करा रहा है। वो केवल मैं उसके पीछे एक ही चीज समझता हूँ, मैं पपेट बन के रहा बस, कि बस वो जैसे नचावे मुझे नाचना है।
बहुत अच्छा भाई जी, कितना नम्रचित्त होकर, सरल होकर, कठपुतली होकर यदि हम इस ज्ञान मार्ग में चले आगे बढ़ेंगे तो सेवाएं हमारे से 100% ज़्यादा होगी और मार्क्स भी हम ज़्यादा ले सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। अभी हम सभी ब्राह्मणों का जो बेसिक फाउंडेशन है पूरे दिन का, वह है अमृत वेला। तो इस अमृत वेला को कैसे पावरफुल बनाए, इसके ऊपर हमें थोड़ा प्रकाश डाले भाई जी।
अमृत वेला वैसे विशेष गृहस्थ में रहने वालों के लिए एक जड़ी बूटी भी है तो एक चैलेंज भी है। जड़ी बूटी इसलिए कि अगर गृहस्थ में रहने वाले भी जो सेंटर पर रहते हैं समर्पित है उनके लिए तो है ही है, लेकिन जो गृहस्थ में रहने वाले हैं वो भी अगर अमृत वेले का योग विधि पूर्वक और बहुत अच्छी स्थिति में करें तो वो गृहस्थी नहीं लेकिन सचमुच गोपी बन जाएंगे। जो बाबा ने आज कहा गृहस्थी नहीं लेकिन गोपी, उसके लिए दो एस्पेक्ट हैं अमृत वेला का, एक है फिजिकल एस्पेक्ट, एक है सटल एस्पेक्ट। फिजिकल माना समय पर उठना, बैठना, बैठे रहना, नींद नहीं आना, ये हो गया एक फिजिकल एस्पेक्ट। और सूक्ष्म एस्पेक्ट जो है मन उस समय बाबा के साथ लगा रहे, ये सूक्ष्म है। दोनों को हमें बैलेंस करके, दोनों पर अटेंशन देके इस समय को हमें स्व बहुत समर्थ बनाना है। इसका नाम ही है अमृत वेला, अमृत है। अगर इस समय को हमने सफल बना लिया, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द डे, पूरे सृष्टि कल्प चक्र का अमृत वेला ये संगम युग है, सृष्टि चक्र का अमृत वेला। क्योंकि अब अमृत वेला के बाद क्या आने वाला है, सतयुग का सवेरा आने वाला है, तो अमृत वेला ये संगम युग है। जिस प्रकार से सृष्टि चक्र का अमृत वेला संगम युग है और संगम युग को हमने जितना सफल किया उतना पूरा चक्र हमारा सफल हो जाता है, उसी प्रकार से दिन का जो समय है वो अमृत वेला है और अमृत वेला को हमने जितना सफल किया उतना जो है हमारा दिन सफल हो जाएगा। अब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अमृत वेले का, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता दूं तो अमृत वेले को सफल करना है तो रात को जल्दी सोना बहुत जरूरी, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि शरीर को अपना आराम चाहिए। या तो आपकी योग की ऐसी ऊंची अवस्था है सारे दिन अगर योग की बहुत ऊंची अवस्था रहती है तो रात को 4 घंटे की नींद से चल सकता है काम, अगर नींद अच्छी अवस्था रहती है सारे दिन, उसका मतलब व्यर्थ संकल्प नहीं चल रहे हो, बिल्कुल पॉजिटिव सोचते हो, शांत हो, बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ा रहता है, तो 4 घंटे की नींद से भी आपका काम आसानी से चल सकता है। और अगर ऊंची अवस्था है तो 2 घंटे की नींद से भी काम चल सकता है, जो अंत में बाबा का चलता था 2 घंटे की नींद से काम चलता। लेकिन जो हम सामान्य है, हम देखो दम को सामान्य एंगल से जो हम सोच रहे हैं तो 6 घंटे की नींद कम से कम अच्छी होनी चाहिए। अब 6 घंटे की नींद के लिए अगर 4 बजे उठना हो तो 10 बजे अगर हम सो जाएं, क्योंकि बिस्तर पर जाना सो जाना नहीं है, बिस्तर पर भले हम 10 बजे चले गए लेकिन सोते कितनी बजे हैं वो हर एक अपना अपना जानता है, तो 10 बजे अगर हम सो जाएं तो 4 बजे हम स्वस्थ रीति से उठ सकते हैं। इसलिए अमृत वेला के लिए सबसे पहली बात तो ये कि हम टाइम पर सोएं, ये बहुत बड़ी बात है। और सोते समय हम 5-10 मिनट अच्छी तरह याद करके फिर सोएं, माना जब एक बार याद किया उसके बाद और कोई बात नहीं किसी के साथ, सोने से पहले बाबा की याद और सोना सीधा, जो बात करनी उसके पहले सारी, बीच में और कोई बात नहीं, फिर बाबा को याद किया सो। फिर उठते ही फर्स्ट थॉट बाबा से गुड मॉर्निंग का और पॉजिटिव थॉट्स, जैसे मैं आत्मा इस शरीर में आई हूँ, आज मुझे श्रेष्ठ कर्म करने हैं, जो भी पॉजिटिव थॉट्स का आप अभ्यास करें थोड़ा, ये नहीं कि अरे 4:15 बज गए मैं तो 15 मिनट लेट उठा, वो नहीं सोचना है, जितने भी बजे उठे आप उस समय वो याद नहीं करना है कि मैं आधा घंटा लेट उठा 15 मिनट लेट उठा, क्योंकि अब जितना वो याद कर रहे हैं उतना और समय वेस्ट हो रहा है अमृत वेले का। इसलिए रात को टाइम पर सो जाओ, सवेरे जितने भी बजे उठो सीधा याद, बाबा की याद और कुछ याद नहीं, भले लेट उठे आप तो भी उसकी चिंता नहीं करो, नहीं तो जितना 10 मिनट भी अमृत वेले का मिलेगा ना तो वो भी वेस्ट हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ अगर 5 बजे भी नींद खुली, 5 बजे भी उठो तो 5 बजे भी उसी श्रेष्ठ संकल्प में बैठो, श्रेष्ठ संकल्प करना है तो इस प्रकार से वो श्रेष्ठ संकल्प करें और अमृत वेला पर अटेंशन देंगे तो सारे दिन का बहुत अच्छा रहेगा। और मैं तो कहता हूँ अगर कभी 5:30 बजे भी उठे तो भी चिंता नहीं करो उसकी बात, अब उठ गए तो उठ ही गए ना, वो तो सो ही गए 5:30, अब 5:30 बजे उठने के बाद भी 15-20 मिनट आधा घंटा जितना बैठ सको अच्छे संकल्प करो, अच्छे याद में बैठो, तो दूसरे दिन आपको और जल्दी उठने की प्रेरणा मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति।
ओम शांति। ऐसा लगा कि ऐसे सेशंस फ्रूटफुल है, नहीं बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती बहुत सारे क्वेश्चंस की, तो ऐसे एक्सपीरियंस ओरिएंटेड जब होता है, क्योंकि भाई साहब ने अपने लाइफ में वो प्रैक्टिकल किया है, उस प्रोसेस के थ्रू गए हैं, और जब कोई थ्रू जा कर के अनुभवी हो कर के कोई बात सुनाता है तो नेचुरली हमको भी वो हेल्प मिलती है, तो हम बार बार आपसे ये लाभ लेते रहेंगे। और भाई जी का
एक 2 मिनट और लेना चाहूँगा, मैं सोचता हूँ नीरेन भाई अपना फीडबैक सुनावे नहीं मतलब इस सेशन को, क्योंकि ऐसे सेशन कम होते हैं तो इसको हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं, या इस प्रकार का हो तो रियली लाभदायक है सबके लिए, या क्या है आप क्या अनुभव किया आपने? 2 मिनट
ओम शांति। ज़्यादातर लाइफ में हम बहुत मैकेनिकल हो जाते हैं, सुबह उठते हैं, हर रोज का काम करते हैं और रात को सो जाते हैं। तो हमने खुद ने अपनी लाइफ को एक मशीन टाइप बना दिया है, लेकिन इस प्रकार के जब बैटरी चार्जिंग का अनुभव मिलता है तो अंदर से एकदम सब कुछ टटोल जाता है। और जो चीज़ हम रूटीन लाइफ में नहीं अनुभव कर पाते हैं और रूटीन लाइफ में हमने जो लूज़ कर दिया है, समथिंग वी हैव लॉस्ट ड्यूरिंग द रूटीन लाइफ, सडनली वी बिकम अवेयर, सडनली वी आर अवेक एंड वी स्टार्ट रियलाइजिंग एंड देन वी गो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो रास्ता हम भूल चुके हैं या जो रास्ता से डीरूट हो गए हैं, वो रास्ता फिर से हम सही रास्ते पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार के ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस बहुत ज़रूरी है अपने आप को समझने के लिए एज टू वेयर डू वी स्टैंड, कितना हम डीरूट हो गए हैं, कितना हम रास्ता भटक गए हैं। तो ये सब सुनना अकेला ये काफ़ी नहीं है, लेकिन सुनना इज अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, जिससे हमको एक जो अवेयरनेस मिलती है, अवेयरनेस से हमारा संकल्पों का एक बदलाव, संकल्प में बदलाव आता है, थॉट प्रोसेस में बदलाव आता है, एंड देन वी ट्राई टू ब्रिंग आवर सेल्फ्स बैक टू दैट लेवल के जहाँ से हम भटक गए हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस प्रकार के सेशंस से बार बार हो जाए, क्योंकि प्रोफेशन में भी मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि नॉलेज में बहुत मैकेनिकल हो जाते हैं, लेकिन जो डेप्थ होती है नॉलेज की, जो डेप्थ होती है वो डेप्थ अनुभव से ही आती है और डेप्थ एक्सपीरियंस से आती है। और वो एक्सपीरियंस करने के लिए समथिंग इज नीडेड टू शेक यू अप, जो एकदम जड़ हो गया है उसको शेकअप करने के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़रूर मानता हूँ कि आज के सेशन में मैंने बहुत पाया है, बहुत फील किया कि अंदर से कुछ हिल रहा है। और देन यू नो द काइंड ऑफ डेथ जो भाई जी ने अपने हमको ले गए हैं, उसे बहुत बहुत अच्छा लगा, थोड़ा बहुत हल्कापन भी महसूस हुआ और कई सवालों का जवाब भी मिल गया मेरे को। तो आज जो मैं आई वॉज स्ट्रगलिंग विद माई सेल्फ, तो देन आई गॉट ट्रू आंसर्स टू सम ऑफ माई क्वेश्चंस। तो मैं बहन जी का, भाई जी का और नवल भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस प्रकार के सेशन से आज हमको बहुत मिला है, ट्रू सेंस में मिला है। जो ज्ञान की बात है, इस केवल सुनने वाली बात नहीं है, लेकिन जो अनुभव वाली जो बात है वो बहुत अच्छा लगा। ओम शांति।
ओम शांति। सो बार बार ये चांस नहीं लेंगे, लेकिन हर बार लेंगे, क्योंकि जब भी भाई साहब यहाँ आएंगे तो अलग अलग प्रश्नों को लेकर के हम उनसे पूछते रहेंगे, तो और गहराई हमें प्राप्त होंगी। बाकी जो अनुभव की अगेन बात है वो फिर कल रखेंगे विरल भाई और हमारा अनुभव, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि इसकी जो एक लहर है वो ब्रेक हो जाए, क्योंकि जिस ज्ञान के अनुभव को और गहराई को लेकर के चल रहे हैं, फिर एकदम से अनुभव एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा जो इसकी इफ़ेक्ट को डाइल्यूट कर देगा। तो हम भाई साहब से अभी टोली लेकर के फिर छुट्टी करेंगे और कल का जो हमारा सेशन है 8:30 से 9:30 का, मैंने 9:30 का कहेंगे, 8:30 से 9:30 हो जाएगा, 9:45 जितना, क्योंकि वो बहुत अच्छा टॉपिक है। और आप अपने साथ किसी भी जो कर्म के हिसाब से जिनको इंटरेस्ट है कर्मों के बारे में, उनको ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और इसलिए आप जितनों को भी जानते हैं जिन्होंने कोर्स किया हुआ है तो उन सबको आप ज़रूर लेकर के आएंगे कोर्स, क्योंकि किया हुआ वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्स होगा तभी इसकी गहराई को समझ पाएंगे। तो एटलीस्ट एकदम न्यू कमर नहीं हो लेकिन कोर्स अवश्य किया हुआ हो, तो ऐसे किसी भी आत्मा को आप लेकर के आ सकते हैं। न्यू कमर भी आवे ओके, तो आप किसी को भी लेकर के आ सकते हैं। ओके ओम शांति।
आपका प्यार बाबा।